Om Shanti. Sermon on the Mount. Mount पर दिया हुआ प्रवचन. तो आज का 23वां. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother had aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Jesus Christ कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा. वो कहता है कि यदि तुम मंदिर में जा रहे हो और कोई भेंट दे रहे हो और वहां तुमको याद आता है कि किसी दोस्त के प्रति तुम्हारे मन में घृणा है, ईर्ष्या है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, पहले जाओ और वो जो दोस्त है, वो जो व्यक्ति है, वो जो आत्मा है जिसके प्रति बदले का भाव है, घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, पहले उससे माफी मांगो, उससे सलाह करो, पहले उससे मेल मिलाप करो, वापस आओ, फिर चढ़ाओ, तो मैं स्वीकार करूंगा. वैसे नहीं. जब तक मन में इस संसार के किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम संपूर्ण बन नहीं सकते. वो जो पहले का है उसी के लिए कहा हुआ है, जो पहले का है उसी के लिए कहा है. इफ thou bring thy gift to the altar, और वहां तुमको याद आता है कि कोई एक व्यक्ति मेरा शत्रु है, पहले जाकर उससे दोस्ती करो, तब तक मैं तुम्हारा कोई भी चीज, तुम्हारी कोई भी चीज मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मन में खोट है, तुम्हारे मन में शुद्ध भावना नहीं है. जो शुद्ध भावना से दी जाएगी वही चीजें मैं स्वीकार करता हूं. जब दान करते हुए तुम्हारे मन में श्रेष्ठ कामना है, आज की मुरली, यदि कोई भिखारी सामने आ जाए तो क्या करो आशीष भाई? आज सुबह की साकार मुरली, आज सुबह की साकार मुरली, कोई भीख मांगने सामने आ जाए तो क्या कहो उससे? हम तुम्हें ऐसी भीख देंगे कि तुम्हें 21 जन्म भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा ही एक वाक्य बाइबल में भी है. जीसस एक स्थान पर जाता है और वहां पर ईसा मसीह को बहुत प्यास लगती है. उसके शिष्य तो गांव में चले गए होते हैं, वहां एक कुआं होता है, वहां एक नीची जाति की स्त्री आती है और वो पानी भर रही होती है. वो कहता है कि मुझे पानी पिलाओ. वो कहती है, मैं कैसे पिलाऊं, मैं बहुत नीच जाति की हूं. पर वो कहता है, नहीं तुम पिलाओ. और वो उसको पिलाती और वो कहता है कि तुमने मुझे पानी दिया, अब मैं तुम्हें एक ऐसा पानी दूंगा कि उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी. आई शैल गिव यू वाटर एंड यू विल नेवर बी थर्स्टी अगेन, द वाटर ऑफ लाइफ. मैं तुम्हें जीवन का वो जल दूंगा, जीवन का वो अमृत दूंगा, जीवन की वो शिक्षाएं दूंगा. वो शिक्षाएं तो नहीं कहता, पानी ही कहता है. आज की मुरली में बाबा ने कहा, यदि द्वार पर कोई आए तो तुम वो हो जो भिखारी को भी माला माल कर दो. उससे कहो कि हम तुम्हें ऐसी भीख देंगे कि तुम्हें 21 जन्म भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर द्वार पर ही कह दो उसको. तो शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ भावना इस संसार की हर आत्मा के प्रति, चाहे कितना भी रावण, जरासंध, शिशुपाल, जयद्रथ, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कोई भी हो, पूतना, शूर्पनखा, कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके प्रति शुभ. तो यहां कहा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा. तब जाकर भेंट को चढ़ा तो ही वो स्वीकार होगी, अन्यथा वो स्वीकार नहीं होगी. तो सुकर्म आज की मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है, तुम्हें सुकर्म करना है. ध्यान रखना है कि सारे दिन भर कोई विकर्म ना हो जाए. कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई अपवित्र कर्म ना हो जाए। ये सारे आज की मुरली के शब्द है। अगला, अग्री विथ थाइन एडवर्सरी क्विकली वाइल्स thou art in the way with him, lest at the time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto you, thou shalt by no means come out thence till thou hast paid the uttermost farthing. और जब तक तू अपने मुद्दई, मुद्दई अर्थात विरोधी, शत्रु, दुश्मन, यदि कोई मार्ग में दुश्मन मिल जाए तो क्या करो, इसके बारे में बताया है। मुद्दई मतलब वो वादी, लीगल भाषा में वादी को क्या कहते हैं, जो जो विरोध करता है, विपक्ष, एडवर्सरी। जब तक तू अपने मुद्दई, मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप करके कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। यदि चलते चलते कोई विरोधी मिल गया या शत्रु मिल जाए तो पहले उससे जाके दोस्ती कर लो। पहले ये मत सोचो कि वो आके मुझे ओम शांति कहे या मुझे कुछ ग्रीटिंग करे या मेरे साथ बात करे। बात पहले मुझे करनी है। स्वयं को छोटा समझकर पहले मुझे जाना है उसके पास। ये मत समझना कि हम तो क्यों जाए, गलती उसकी थी, वो आना चाहिए पहले मेरे पास, मैं क्यों जाऊं उसके पास, हमारी तो गलती थी नहीं। उसको आकर पहले माफी मांगे, फिर हम बात करेंगे। मैं राइट हूं, पहले मानो तुम कि तुम गलत हो, फिर मैं बात करूंगा। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो, पहले बोलो कि हां मेरी लास्ट टाइम गलती हो गई थी, मैं माफी मांगता हूं, हां अब हम बात करेंगे, अब आ जाओ सेवा में वापस, तुम्हारी बहुत जरूरत है। यदि कोई दुश्मन मिल जाए, यदि कोई मुद्दई मिल जाए, यदि एडवर्सरी मिल जाए, अपोज करने वाला मिल जाए, तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ता, इससे पहले कि वो तुमको पकड़ के जज के पास ले जाए और जज तुम्हें ऑफिसर के पास ले जाए और ऑफिसर तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। ये सारी, ये उस काल की लिखी हुई बातें है। ये पता नहीं वो किस अर्थों में ये सारी चीजें कह रहा है, कौन सा जज और कौन सा प्रिजन और कौन सा ऑफिसर, ये सब सूक्ष्म है या स्थूल है पता नहीं, पर कह रहा है कि इससे पहले कि बंदी गृह में तुम डाल दिए जाए, कारागार में, उसके साथ दोस्ती कर लो, उसका भी बचेगा। आज कहा ना, विघ्न आता है तो ये सारे क्या क्यों के प्रश्न सहा कर दो यज्ञ में, स्वयं का भी टाइम बचेगा, उसका भी टाइम बचेगा। नहीं तो एक आत्मा के साथ दुश्मनी अगर हो जाए तो टाइम कितना जाता है, हर एक महसूस कर सकता है, कितने अमृत वेला उसी के चिंतन में चले जाते हैं कितना नुमा शाम का योग में वही घूमते रहता है, गोल 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 गोल, उसी की परिक्रमा चालू रहती है, मनन चिंतन, गहन मनन चिंतन। जो आज तक ज्ञान का ऐसा मनन चिंतन नहीं किया होगा, वो उस आत्मा का मनन चिंतन किया, उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख दी पूरी, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, वो इसने मेरे साथ ये किया, उसने और किस किस के साथ क्या क्या किया, हाँ ये ऐसा ही है, फिर उसके ऊपर स्टैंप लगाओ और फिर थोड़ा अच्छा व्यवहार करे तो वापस उसको रिवाइज करो, ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले का स्टैंप थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तो कितना एक ही आत्मा के इर्द गिर्द आत्मा घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। उस दिन संडे की मुरली में कहा, प्रभावित होना अर्थात दो अर्थ है कामना के, एक है परेशान होना और एक है प्रभावित होना। कामना के दो अर्थ, एक तो प्रभावित हो गए और दूसरा परेशान उस आत्मा से। इसके लिए यहां कहा, यदि कोई दुश्मन मिल जाए रास्ते में, तुरंत दोस्ती कर लो, खुद सामने से जाके ये भूल जाओ उसने क्या किया था, उसकी वो बातें मन में नहीं रखनी है, किसी के तरफ से अपने मन को मैला नहीं करके रखना है। जिसने जो किया, जैसा किया, ठीक, सब अच्छा ही किया, सब अच्छा ही हुआ। Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver this to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto you, मैं तुमसे कहता हूं, ये जो शब्द आते हैं ना, मैं कहता हूं, ये साधारण मनुष्य जैसे शब्द नहीं है, ये जितने धर्म स्थापक थे इनकी वाणी में ऐसे पावर थी कि इनका आगमन जब हुआ पूरे समुदाय उनके पीछे आ गया, एक नए धर्म की स्थापना हो गई, क्योंकि उनकी पावर इतनी ज्यादा थी। वो जो ये इस तरह से शब्द कहते थे, बोलते थे कि मैं, क्योंकि उस मैं में निरंकारिता थी। वेरीली आई से अनटू थी, मैं तुमसे कहता हूं, थाउ शॉल्ट बाय नो विंस। और फिर जेल में जाने के बाद जब तक तुम बहुत सारा पैसा नहीं चुकाओगे, वापस नहीं छूट के आओगे, फार्दिंग अर्थात कि पैसे, वहां के जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएंगे। कहां से? बंदीगृह से। ये मानसिक बंदीगृह है या वास्तविक, ये सोचने का विषय है। तो ये दूसरी बात। तो कोई से झगड़ा हो गया हो तो क्या करना चाहिए? खुद हमें जाना चाहिए, सुलह कर लेना चाहिए पहले। अगर वो छोटा है तो कौन जाना चाहिए? पहले उसको जाना चाहिए, पहले उसको आना चाहिए, हम तो बड़े हैं। बोलने का ढंग कैसा है, मौका देख के, स्थान परिस्थिति देखकर, किस ढंग से वो कहा जाता है। अहंकार से कहा जाता है, वाणी में अब अहम है तो वो बिगड़ेगा, परंतु निरंकारिता से उसको सुबह सुबह अमृत वेला भी कहना है पहले, फिर जाके वास्तव में कहना। वो हम उसके लिए कर ही नहीं रहे, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं वास्तविक। हमारा जो मन भारी है, हमारा जो ये योग फिट गया है, उसके लिए हम कर रहे हैं। उसकी तो बात बहुत बात की है, क्योंकि हमारा सारे संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं उस एक आत्मा की वजह से। हम उसके लिए कर रहे हैं, हमारे अपने लिए, उसके लिए मतलब ये बात के लिए। अभी आगे, ई हैव हर्ड दैट इट वॉज सेड बाय देम ऑफ द ओल्ड टाइम, थाउ शैल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि कभी तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, काम कटारी नहीं चलानी है, एडल्ट्री। चलो पहले ये दो तीन शब्द ये बता देते हैं। इंग्लिश में होता है यू, ठीक है, यू मतलब तुम। पुरानी जो इंग्लिश है उसमें कहते थे धाओ, ठीक है, और जब अनेक वचन है तब कहते थे ई। इंग्लिश में होता है शैल, वो कहते हैं शैल्ट, टी लगाते हैं, ये पुरानी इंग्लिश है। फिर उसमें होता हैज, इंग्लिश में उसमें होता है हैथ, एच ए टी एच। इसमें है हैड, इसमें हैड्स, ओल्ड इंग्लिश, ये पुरानी शेक्सपियर वाली इंग्लिश है। तो इसमें वही भाषा का प्रयोग, वास्तव में ये तो इंग्लिश में लिखा ही नहीं गया, ये तो हिब्रू में लिखी गई है, उसका भी ट्रांसलेशन है ये। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है यहां पर। तुमने पुराने काल में, ओल्ड टाइम्स में क्या सुन के रखा है कि व्यभिचार नहीं करना है, अब पर मैं क्या कहता हूं? बट आई से अन टू यू दैट व्हाटसोएवर लुकेथ ऑन अ वुमन टू लस्ट आफ्टर हर हैथ कमिटेड एडल्ट्री विथ हर ऑलरेडी इन हिज हार्ट। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पुराने काल में तुमने सुना है व्यभिचार नहीं करना है, काम कटारी नहीं चलानी है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने कुदृष्टि डाली है, केवल उस कुदृष्टि में ही क्रिया हो गई, केवल दृष्टि से वो पाप कर्म हो गया, इसके लिए तुम्हारी दृष्टि कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें मीठे बच्चे, कौमा, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें कुमार और कुमारी की स्टेज के भान से भी ऊपर निकल जाना है। तुम्हें कुमारी हूं, कुमार हूं, इससे भी ऊपर निकल जाना है। अशरीरी आए थे, ऊपर से कैसे आए थे? कुछ लेकर आए थे कि हाथ में कुछ भी नहीं था जब लाए थे? वैसे ही जाना है, अनासक्त होना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस देह को भी भूल जाओ, कर्मातीत बनकर तुम्हें जाना है। अनासक्त शब्द प्रयोग किया है बाबा ने। फिर कुदृष्टि कैसी, कितने कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है यहां पर। वो तो बहुत बात की बात है व्याभिचार, यहां तुम्हारी दृष्टि भी यदि, एंड आई से अनटू यू, और मैं तुमसे कहता हूं, तुमने ये तो सुन के रखा है पुराने काल में, ऐसा नहीं करो, पर मैं क्या कहता हूं, आई से अनटू यू दैट व्हाटसोएवर लुकेथ ऑन अ वुमन टू लस्ट आफ्टर हर हैथ कमिटेड एडल्ट्री विथ हर ऑलरेडी इन हिज हार्ट. ये जो काम विकार, ये जो काम कटारी, ये जो व्याभिचार, ये पहले ही उस केवल दृष्टि से, इसके लिए तुम्हारी दृष्टि कितनी शुद्ध होनी चाहिए, कितनी पवित्र होनी चाहिए. आज की मुरली में गृहस्थ में रहते पवित्र बनो. वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मंजूबेन, पवित्रता की तो बात ही मत करो. वो लोग कहते हैं पवित्रता की तो बात ही नहीं उठानी चाहिए, शरीर कैसे चलेगा, ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो. पर उन्हें उस पवित्र दुनिया की कोई खबर नहीं है, वो थे ही नहीं उधर. फिर वो कहते ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. उनसे फट से कह दो कि वहां तो रावण राजी नहीं है, उनसे ऐसे कहो तुम, फट से बोल दो कि वहां तो रावण राजी नहीं है. ये जो सृष्टि विकारी है, रावण ने उत्पन्न की है, विकार से उत्पन्न सृष्टि है. पर एक समय ऐसा भी था सृष्टि में, इस संसार में, जहां संपूर्ण निर्विकारिता थी, संपूर्ण प्यूरिटी थी, संपूर्ण पवित्रता थी. तुमने क्या वायदा किया था भक्ति में, तुमने भक्ति में आज की मुरली क्या वायदा किया था, क्या प्रतिज्ञा की थी कि एक तुमसे ही प्यार करेंगे, फिर दूसरे से प्यार क्यों करते हो. बाबा ने प्रश्न पूछा है, फिर दूसरे से प्यार क्यों करते हो. केवल एक ही स्मृति रहे, एक की ही स्मृति रहे तो ऊंच पद पाए पाओगे, एक की स्मृति बस. तो यहां प्यूरिटी की बातें हमेशा से द्वापर से ही आत्माओं को सिखाई गई है, बताई गई है, क्योंकि प्यूरिटी में वो पावर थी. जितने भी योगी, तपस्वी, महापुरुष, सन्यासी और जो भी धर्म स्थापन हुए है, किस आधार से हुए, प्यूरिटी के आधार से. बिना प्यूरिटी के धर्म स्थापन भी नहीं हो सकता है. ये जीसस क्राइस्ट खुद सन्यासी है, खुद ब्रह्मचारी है, उसका जीवन संपूर्ण प्योर लाइफ है, कहीं पर भी विकार का अंश मात्र तक नहीं है कहीं पर. इतना शुद्ध, इतना प्योर उसका जीवन है. और उसके जितने भी वो सन्यासी थे, शिष्य 12 के 12, वो सब भी वैसे ही थे उसके जैसे, एक छोड़कर जिसने धोखा दिया था. वो कहता है, फॉक्सेस हैव होल्स एंड बर्ड्स हैव नेस्ट बट दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड. वो कहता है कि यहां पर सबके लिए देखो कितना सब कुछ बना हुआ है, पर मेरे लिए तो सिर रखने के लिए जगह नहीं है. आज उसके लिए बड़े बड़े चर्च खड़े करके रखे, पर जब वो था, उसके साथ आलोचना, निंदा की गई उसकी, बहुत सताया गया, उसको मारा गया, उसको पत्थर पथराव किया गया उसके ऊपर. जहां जाता था उसको वहां से भगा दिया जाता था, जाते थे लोग, तो लोग उसके विरोधी थे. ये जो पंडित थे उस समय के, देखने वाले, वहां के सारे लोग सब उसके विरोध में थे. इतनी छोटा और इतना ऊंचा ज्ञान कहां से, ये किस अथॉरिटी से बोल रहा है वो. अभी अभी आए तुम हमारे सामने और ये सब बोलते हो. धर्म ग्लानी, धर्म निंदा है ये. और वो बातें देखो कितनी ऊंची ऊंची कह रहा है. उसमें एक उदाहरण दिया है कि एक स्त्री को पकड़कर वो लोग लाते हैं जीसस क्राइस्ट के सामने बीच सड़क पर, और फिर उसके चरणों में ढकेलते हैं उसको और कहते हैं, अब तुम न्याय कर. क्या कहते हो देखते हैं, इस स्त्री को हमने व्याभिचार करते हुए पकड़ा है, अब इसका क्या दंड है तुम बताओ. अगर वो कहता है, दोनों तरफ से वो सोच के आते हैं कैसे इसको फंसाना है. अगर वो कहता है कि इसको दंड दिया जाए, तो फिर कहां है तुम्हारा रहम भाव. तुम कहते हो ना सभी ईश्वर की संतान है, तो तुम्हारा रहम दिल भाव कहां गया फिर. अगर वो कहता है कि इसको छोड़ दो, तो कहेंगे कि ये क्या कह रहे हो, कि लॉज में तो ऐसा है ही नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है ऐसे करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. फिर तो दोनों तरफ से सोच के वो आते हैं और फेंकते हैं उसको, उस स्त्री को उसके सामने. तो वो कहते हैं, अब न्याय करो, क्या करते हो. तो वो क्या करता है, जमीन पे अपने हाथ से लिखता है और एक वाक्य कहता है कि जिसने आज तक कोई भी पाप नहीं किया है, वो सामने आए सबसे पहला पत्थर वो इसको मारेगा. धीरे धीरे एक एक अपना पत्थर वहीं छोड़ के सब अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उस सभा में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने पाप व्यभिचार नहीं किया हो, सभी पापी थे। फिर वो स्त्री अकेली रह जाती है, वो उसके पास आती है, कहती है अब मैं क्या करूं। वो कहता है गो एंड सिन नो मोर, अब जाओ और पवित्र जीवन बिताओ, अब पाप मत करना। उसके चरणों में वो गिरती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहां वो कह रहा है दृष्टि कैसी हो, शुद्ध दृष्टि, पवित्र दृष्टि। तुम्हें स्त्री और पुरुष इस भान से भी बाहर निकलना है, कुमार और कुमारी हूं इससे भी ऊपर उठ जाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनाओ, आज की मुरली में तुम्हें अपनी अवस्था जमानी है, बहादुर बनना है। तुम्हें अपनी अवस्था जमानी है, और अवस्था गिराने वाला यही है देहभान। एक भी विकार कम नहीं है आज की मुरली में, एक भी विकार कम नहीं है। मोह को याद किया और माताएं और कुमारियों को भी याद किया। यह मोह देहभान में फंसाने वाला है, पहले मोह फिर देहभान और फिर काम। इसके लिए दृष्टि पवित्र हो, संकल्प पवित्र हो, जीवन पवित्र हो, सच्चरित्र हो। बाबा ने कहा गुणगान करो, किसका, तीन बातों के का चिंतन करो आज सारे दिन भर। एक तो बाप की महिमा का चिंतन करो, वो ये है, वो है, वो क्या है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे भी हो। फिर देवताओं की महिमा करो, देवताओं में क्या क्या गुण थे। मैं देवता हूं, मैं, एक कुमार मिला था कहता था मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं नारायण हूं, नारायण हूं, पर मुझे एक लक्ष्मी की भी तलाश है। क्या करूं, नेक्स्ट तो चाहिए ना एक। कोई एक लक्ष्मी मिल जाए बाजू में खड़े रहने के लिए तो बात बन जाए। बोले ये तो आधा ही सोचना हुआ ना कि मैं नारायण हूं, नारायण हूं, इससे थोड़ी एक लक्ष्मी चाहिए। कोई अच्छी सी कोई बीके अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, धारणा युक्त। हाँ विष्णु थोड़ा ठीक है। तो एक तो बाप की महिमा गाते रहो, उसकी महिमा गाते गाते उसके गुण हम में आते जाएंगे। फिर उसके बाद में देवताओं की महिमा गाते रहो, और उसके बाद में स्वयं की, ब्राह्मण जीवन की, स्वयं की महिमा गाते रहो दिन भर, कि हमें क्या मिला, हमें कौन मिला, हमें क्या चाहिए, भगवान ने कितना हमको उच्च पद बता दिया, क्या से क्या बना दिया। आज का खुद ही टीचर बनो तुम, ये मत मांगो, ये मत कहो कि हमारे पास टीचर चाहिए, खुद ही टीचर बन जाओ, हर एक को टीचर बन जाना है। तो बाप की महिमा, दिन रात उसकी महिमा करते रहना मन ही मन, देवताओं की महिमा करते रहना, स्वयं की महिमा करते रहना। आज की मुरली में तीन प्रश्न पूछे है बाबा से आत्माओं ने, और बाबा ने खतरनाक जवाब दिए है। बाबा ने कहा, बाबा से पूछा तुम साइंस जानते हो क्या, शिव बाबा। बाबा से पूछा डू यू नो साइंस, बताओ तुम भगवान हो ना। बाबा कहते मैं क्या पतितों को पावन बनाने आया हूं, मैं क्या साइंस सीखूं, अपना धंधा छोड़कर कुछ और करते बैठू, मैं क्या ये करने आया हूं क्या यहां पे, मेरे पास टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं मैं यहां पर ये सब करने के लिए। दूसरा प्रश्न पूछा बाबा से, आपने फलाना शास्त्र पढ़ा है क्या। शिव बाबा बताओ तुमने फलाना शास्त्र पढ़ा है क्या। बाबा ने कहा शास्त्र भक्ति मार्ग के है, मैं भक्ति मार्ग के शास्त्र क्यों पढ़ू। तीसरा प्रश्न पूछा, आप किसी सत्संग में गए हो क्या। तुमने जाकर सत्संग में जाकर कुछ सीखा है क्या। बाबा ने कहा मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो उसकी महिमा गाते रहो, ये ऐसा है वो, ऐसे उसके उत्तर है जबरदस्त। देवताओं की महिमा करते रहो, क्या करोगे देवताओं की महिमा आज की मुरली से। बे टाइम कभी नहीं खाते, नया शब्द निर्माण किया है बाबा ने, बे टाइम, बे हिंदी से निकाला और टाइम इंग्लिश से निकालकर दोनों को जोड़कर नए शब्द रचना की, बे टाइम नहीं खाते कभी, बड़ी फर्स्ट क्लास रॉयल्टी से खाते हैं। वो जो भी है, बड़े फर्स्ट क्लास खाते हैं, बे टाइम नहीं खाते। और आज की मुरली से धारणा के लिए सार बड़ा खतरनाक सार है। सर्विस करते करते तुम्हें भोजन की भी दरकार नहीं, तो आज से भोजन बंद। सर्विस करते करते तुम्हें भोजन की भी दरकार नहीं है, खुशी जैसी खुराक नहीं, बाबा ने कहा। तो आज से निकलेश भाई भोजन बंद, ठीक है। बाबा ने कहा तुमको दरकार ही नहीं है भोजन की। तो तो एक जगह हम गए थे कभी, तो वहां पे वो कहा था कि भोजन को वेस्ट नहीं करना है। तो वो बड़ी बहन जी ने अनाउंसमेंट किया था फिर कि सबके लिए चाय बनी है, सबको चाय पीकर ही जाना है। अभी अभी सुना ना, वेस्ट नहीं करना है। ये भी एक अर्थ था उसका। सबको चाय पीकर ही जाना है। ये भी अर्थ हो सकता है उसका, ठीक है। तो तीन बातें यहां पर देखिए आज। सबसे पहली बात कि यदि भेंट देने कुछ जाते हो, इसका एक दूसरा भी अर्थ कहीं कहीं, एक बाइबल सोसाइटी है। हम सोच रहे थे ये लोग शास्त्रों की सोसाइटी बनाते हैं ताकि बाइबल को डिस्कस कर सके। हमारी मुरली सोसाइटी कोई नहीं है आज तक। ये मुरली हमारी बाइबल है, हमारा शास्त्र है। हम बैठकर ऐसी डिस्कशन नहीं करते। ये लोगों की अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है जहां पर वो 10-12 विद्वान पादरी लोग मिलते बैठते हैं, एक व्यक्ति पढ़ता है और उसके ऊपर बहुत सारा चिंतन किया जाता है कि ये जो कहा गया सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप उनका, तो वो लोगों की ऐसी ढेर सारी सोसाइटीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चिंतन किया जाता है एक एक लाइन पर। यहां तो हम एक लाइन का चार लाइन, कितनी अच्छे बातें एक आधे घंटे में पूरा कर रहे हैं। वो एक ही लाइन पर एक एक अर्थ का शब्द निकालते हैं। क्या अर्थ हो सकता है कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा? तो सबसे पहली बात ये भी उसका दूसरा अर्थ है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, आप उससे मिलने जा रहे हो फूल लेकर और उसके मन में सोच रहे हो कि इसके साथ अच्छा ही हुआ। हमको ऐसा कहा था ना, इसने बीमार पड़ा अच्छा ही है। वो कहता है फूल बाजू में रखो, पहले जाओ और उससे मन ही मन पहले माफी मांगो और फिर आओ और फिर उसको वो फूल दो। अगर वो बीमार है और उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो तुम, तो सबसे पहले जो भी चढ़ा रहे हो ये वेदी पर, पहले जाओ मेल मिलाप करो, फिर आओ, फिर चढ़ाओ, हृदय को शुद्ध करो। ये पहली बात। दूसरा, अगर रास्ते चलते कोई शत्रु मिल जाए तो झुक झुक के प्रणाम करो उसको खुद। पहले तुम करो। और तीसरा, तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि कैसी हो? संपूर्ण शुद्ध। इंद्रिया तो निर्दोष है, लोगों ने आंखें फोड़ दी, लोगों ने खुद को भूखा रखा, लोगों ने सोए नहीं ताकि रात में कोई स्वप्न ना दिख जाए जिसमें विकार आए, और इसके लिए सोना ही नहीं। ऐसा भी कई कई सन्यासियों ने किया, ऐसी जड़ी बूटियां खाई कि जिससे नींद ही नहीं आए, क्योंकि नींद आते हैं तो रात में विकार दिखते हैं, क्या करे। अच्छा है कि सोए नहीं, इंद्रियों को काट दिया। बिचारी इंद्रिया कितनी निर्दोष है, इनोसेंट, उनका तो कोई दोष ही नहीं है। दोष तो इधर है विचारों का, उनको कुछ करने से थोड़ी ना होगा। भूखा रखा, कुछ खाए तो ऊर्जा आएगी, फिर विचार आएंगे। खाओ भी मत, बुद्धि डल हो जाती है भूखा रहो तो विकारों की तो बात ही नहीं। अफीम लो, डल हो जाता है वो, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है पल भर के लिए, फिर उसका एडिक्शन हो जाता है, वो दूसरी बात। ये सारे उपाय किए लोगों ने अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए। तो तीसरी बात, ई हैव हर्ड दैट इट इज सेड बाय देम ऑफ ओल्ड टाइम दाउ शाल नॉट कमिट एडल्ट्री। एडल्ट्री अर्थात काम विकार, एडल्ट्री अर्थात काम कटारी चलाना। Thou shall not commit adultery, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये कि केवल दृष्टि से ही क्रिया है, इसके लिए दृष्टि को भी शुद्ध कर दो। ओम शांति।